फिलोसोफर ने अपनी तरफ से बड़ा बम्बार्ड किस्म का सवाल किया, तुम कैसे प्रूफ करोगे कि खुदा है? तो बद्दू ने क्या कहा? बद्दू ने चलते चलते खामोशी से कैमल पू की तरफ इशारा कर दिया, वहां पड़ी हुई थी। इस्तेरकल बेअरल बाइर, उसने कहा ये कैमल पू बता रही है कि यहां से कैमल गुजरा है। इस कायनात का परफेक्शन मुझे बताता है देर इज अ सुप्रीम लॉर्ड, एक कैपिटल जी से लिखे जाने वाला खुदा है। सिंपल, किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री उसके पास नहीं थी, बट थॉट पैटर्न ठीक था उसका। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस रमजान हमारा थॉट पैटर्न दुरुस्त कर दे, ताकि हमारे पर्सपेक्टिव्स बदलने लग जाएं और हम इस दीन को अपनी जिंदगी में अहमियत देने लग जाएं। फिर आपको हर चीज मौजजा नजर आएगी। यहां आना मौजजा, घर वापस खैरियत से पहुंच जाना मौजजा, अपनी जिंदगी के महीने और साल गुजरना मौजजा, अपनी नेमतों का सही जगह इस्तेमाल करना मौजजा, अपनी औलाद के एंगल से, उनकी हिफाजत के एंगल से, जितना हम सोचें हमें हर दिन मौजजा नजर आएगा। हम उनको अल्लाह के हवाले करते हैं ना, कितना हम उनको अपनी गोदों में बिठा बिठा कर रखेंगे। अल्लाह ही तो हिफाजत करता है, तो हर दिन तो मौजजा है। सिर्फ कुरान हमारा पर्सपेक्टिव बदल सकता है। तो दूसरा मीनिंग याद रखिएगा, दूसरा मीनिंग है इस सूरज और चांद का परफेक्ट ऑब्जेक्ट होना। तीसरा मीनिंग जो भी हुस्बान में मुफस्सरीन बताते हैं, वो कहते हैं कि कायनात, सूरज और चांद अल्लाह की परफेक्ट फरमाबरदारी करते हैं। बेहुस्बान जो परफेक्टली उसी तरीके कार पर, उसी कैलकुलेशन पर चल रहे हैं जो अल्लाह ने उनको असाइंड कर दिया है। कायनात अल्लाह की फरमाबरदारी की तस्वीर, तीसरे मीनिंग बेहुस्बान के आते हैं। चौथा मीनिंग बेहुस्बान का, तीसरा मीनिंग क्या था? जो अल्लाह की फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी में एक इंच इधर उधर नहीं होते। अल्लाह ने जिसको, सूरज को जो काम बता दिया, सूरज वो काम करता है, चांद को जो काम बता दिया, चांद वो काम करता है। तो असल में इंसान को सुनाया जा रहा है कि इंसान को भी फिक्र करने की जरूरत है। चौथा मफहूम इसका लिया जाता है बेहुस्बान का, ऑन परफेक्ट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल मैंने आपको मिसाल दी थी तीन चीजों की, फूल की, अर्थवॉर्म की और दरख्त की, याद है? सूरज और चांद के लिए भी बेहुस्बान में यह मफहूम आता है। दे आर जस्ट स्पेंडिंग देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अपनी नेचर से, अपनी जिम्मेदारी से इधर उधर नहीं होते। तो थर्ड एंड फोर्थ इज मिलता जुलता मफहूम, लेकिन ये बिल्कुल अलग है समझने के लिए, क्योंकि फितरत इंसान में भी रखी गई है। इंसान बार बार अपनी फितरत से नीचे आता है, हम अपनी फितरत से बॉटम लाइन पर जाते हैं और नीचे जाते हैं। दो लाइंस याद है, हर मखलूक की दो लाइंस और इंसान की जस्ट वन लाइन, द बॉटम लाइन इज द फितरा लाइन। इंसान बार बार इस बॉटम लाइन से नीचे गिरता है। तो अल्लाह ने जो सूरज और चांद की मिसाल दी है, ये अपनी नेचर को के मुताबिक जिंदगियां गुजार रहे हैं, ये अपनी नेचर से इधर उधर नहीं होते। फिफ्थ मफहूम बेहुस्बान का, दिस इज द फाइनल वन, सूरह कहफ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पढ़ते हैं। सूरह कहफ में बाग वाले का वाकया हम सबको मालूम है कि अल्लाह ने एक शख्स को दो बाग दिए थे। सूरह कहफ में आता है उसी बाग वाले के लिए कि जिसने तकब्बुर किया था और अपने साथी के साथ अपने उस बागात को अपना क्रेडिट समझा था, जिसके ऊपर आयत आई थी औ युरसिला अलैहा हुस्बानन मिनस समाई फतुस्बिहा सईदन ज़लक़ा। तो उसके दोस्त ने क्या कहा था कि हो सकता है अल्लाह आसमान से कोई आफत भेजे। हुस्बानन वही लफ्ज है जो यहां भी हुस्बानिन आया है, सेम वर्ड, सिर्फ आपको इसकी एंड की प्रोनंसिएशन अलग मिल रही है। अरबी जानने वालों को ये बात मालूम है कि हुस्बानिन और हुस्बानन में क्या फर्क है, बट वर्ड इज सेम। सूरह कहफ में आया था औ युरसिला अलैहा कि अल्लाह भेजे आसमान से इस बाग पर हुस्बानन कोई तूफान। तो हुस्बानन का एक मफहूम, फिफ्थ मफहूम मुफस्सरीन ने किया है डिस्ट्रक्शन। इस मफहूम से देखेंगे तो सूरज और चांद अनकरीब डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, ठीक है? सूरज और चांद अनकरीब डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। तो कयामत के साइंस में से एक साइन होगा जो आपको अहदीस से पता चलता है कि सूरज और चांद को अल्लाह ताला तबाह कर देगा। कुरैश को बता दिया गया और 1450 साल बाद आने वाले मुसलमानों को जो इस वक्त बैठे कुरान हम सब पढ़ रहे हैं, हमें बता दिया गया। हमें बता दिया गया कि सूरज और चांद का डिस्ट्रॉय होना एक कयामत की अलामत है, लेकिन सबसे बड़ी कयामत की अलामत ऑलरेडी जाहिर हो चुकी है। अगर ह्यूमन हिस्ट्री को आदम अलैहि सलाम से देखा जाए, वो सबसे बड़ी अलामत ये कि आखिरी किताब कुरान नाजिल हो चुका। आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के लिए आ चुके थे और हमारे लिए आकर जा भी चुके, और 1450 साल हो चुके। तो सबसे बड़ी अलामत जिसको मुफस्सरीन कयामत की बड़ी अलामतों में से अलामत कहते हैं, वो ये कि कुरान नाजिल हो गया। अब मजीद क्या इंतजार करेगा इंसान अपनी इस्लाह के लिए? चांद का दो टुकड़े होना अल्लाह ताला ऑलरेडी उनको बता चुका था। तो मेंशन किया गया कि हुस्बानन का डिस्ट्रक्शन का मफहूम अगर जहन में रखा जाए, तो अल्लाह ताला ने यहां वाजे किया है कि ए इंसान, तुम्हारे पास मोहलत कम है। तुम्हारे सर के ऊपर जो सूरज मौजूद है और जो तुम्हें रात में अंधेरे में कुछ रोशनी देने वाला चांद मौजूद है, अल्लाह जिस वक्त चाहे इसको तबाह कर दे। सूरह कमर में आता है, इक्तरबत सा, आगे क्या आता है, वनशक्कल कमर, साआ करीब है। साआ, साआतुन कयामत को कहते हैं, कयामत की घड़ी, जब कयामत की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। एक है कयामत जो अरबी में आता है अल कियामा, और एक है अस्साआ, दोनों में फर्क है। अस्साआ वो इनिशियल स्टेप्स हैं जिससे कयामत को शुरू किया जाएगा। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मुफस्सरीन कहते हैं बेहुस्बान में डिस्ट्रक्शन को बता दिया गया कुरैश को, और हर मुसलमान को जो कुरान पढ़ेगा कि अन करीब कयामत तो आएगी, ये दोनों तबाह होंगे और कयामत बहुत करीब है। सूरतुल कमर में कहा था इकतरबत सा, कयामत बहुत करीब है। वनशक्कल कमर, इसलिए कि चांद को दो टुकड़े कर दिया गया, और चांद को दो टुकड़े हुए 2 साल हुए कि 1450 साल हो चुके हैं। चांद को दो टुकड़े हुए भी कई साल हो चुके, तो अब इस वक्त बताया जा रहा है कि ये जो सूरज और चांद तुमको वक्त और कैलेंडर की अहमियत बता रहे हैं, अपने वक्त का, अपनी जिंदगी का बेहतरीन फायदा उठा लो। आयत नंबर 6 आगे उसी क्रिएशन की बात को कंटिन्यू कर रही है कि क्रिएशन की बात जो है वो किस तरह से सामने आएगी। व नजमु व शजरु यसजुदान, और सितारे और दरख्त सब सजदा करते हैं, कर रहे हैं या करेंगे, सब सजदा रेज हैं। द बेस्ट वर्ड इन उर्दू के सितारे और दरख्त सजदा रेज हैं, सजदे में हैं। आप देखें यहां पर पीछे भी आयत में शम्स और कमर आया था, और यहां पर भी आपको दो चीजें ड्यूअलिटी में नजर आ रही हैं, तस्निया में नजर आ रही हैं, नजम और शजर, साथ साथ पेयर आ रहा है। अल्लाह ने कनेक्शन बताया। अगर आप पीछे से जोड़ेंगे इस आयत को, आयत नंबर 6 को आयत नंबर 5 से जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे? आयत नंबर 5 शुरू हुई थी तो कोई शुरू में वाओ था, जरा पलट के देखें, आयत के शुरू में कोई वाओ है? कैसे शुरू हुई आयत? अशम्सु। आयत नंबर 6 कैसे शुरू हो रही? वन नजमो। इसका मतलब है ये आयत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। वैसे भी तो हर आयत कुरान की पिछली आयत से कनेक्टेड होती है, लेकिन जहां ये आपको वाओ नजर आ जाता है, वहां वो पिछली आयत का एग्जैक्ट वही वाला कनेक्शन आगे बढ़ाते हुए आयत बढ़ रही होती है। तो जब आप पिछली आयत से भी हुस्बान से वाओ से इसको कनेक्ट करेंगी, तो बताया जा रहा है कि जैसे सूरज और चांद तबाह होंगे, इसी तरह से और क्या तबाह होगा? सितारे और दरख्त। ये वाओ ये बता रहा है मफहूम, मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रही, स्कॉलर्स क्या कहते हैं, वाओ से कंटिन्यूएशन हो रहा है। सितारे और दरख्त भी इसी तरह कयामत से पहले तबाह हो जाएंगे। जाहिर है जब वो गिरेगा सितारा तो वो सजदा रेज हो जाएगा, दरख्त गिरेगा तो सजदा रेज हो जाएगा। एक मफहूम इसका ये लिया जाता है यस जुदान का, कि जब कयामत आएगी डिस्ट्रक्शन होगी तो सितारे और दरख्त गिर जाएंगे, बिल्कुल जैसे वो सजदे में गिरे हुए नजर आए। एक मफहूम इसका ये लिया जाता है। क्यों सितारों की और दरख्त की मिसाल दी गई? अरब के लिए रात में और दिन में जहां सूरज और चांद अहमियत रखता था, चाहे उनके पास कोई साइंस का इल्म नहीं था, लेकिन ये दो ऑब्जेक्ट्स वो जानते थे। बिल्कुल इसी तरह से अरब, जो बाकी दुनिया से कटे हुए थे, जिनके नेबर्स में बड़ी बड़ी जॉइंट एम्पायर्स थी, रोमन और पर्शियन एम्पायर्स, जहां साइंस बहुत आगे निकल चुकी थी, मेडिसिन बहुत आगे निकल गई थी। रोमन्स मेडिसिन में बहुत आगे थे, लेकिन आप देखें कि ये अरब बिल्कुल दरमियान में अपने नेबरिंग कंट्री से कटे हुए थे। इनको ऐसी मिसालें दी गई जिससे ये बिल्कुल एक आम सतही लेवल पर बात समझ सकें। सितारों को ये देखते थे इसलिए कि सहरा में सफर करते हुए नेविगेशन इनके सितारों के जरिए होती थी। आज भी स्टार्स इस्तेमाल किए जाते हैं नेविगेशन के लिए। दरख्त इनके लिए बहुत खूबसूरती का बायस होता था। सहरा में रेयरली दरख्त होते थे, झाड़ियां होती थी, बुशेज होते थे, तो इन दोनों को ये एडमायर करते थे। अगर आप अरबिक जाहिली पोइट्री पढ़ें, जिसके बारे में आपको बड़े बेहतरीन रिदम मिलते हैं, उस अरबिक पोइट्री में आपको नजर आएगा कि ये शायरी में एडमायर करते थे रात के सितारों को और दिन में मौजूद दरख्त के साये को। और तीसरी चीज होती थी औरत, हाँ चौथी चीज भी थी इनमें शायरी में, सदका। अरब कितने बुरे थे, सदका बहुत करते थे, फिलेंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज बहुत करते थे। तो अल्लाह ताला ने इनका, बहरहाल बहुत से इन्हीं में से अल्लाह ने ईमान वाले निकाले, इन्हीं का दिल खोला। तो अल्लाह ने वो एंटिटीज इनको मेंशन की जो इनके लिए कम से कम एंजॉयमेंट का सामान थी, इनके लिए खूबसूरती का सामान थी। अल्लाह ने कहा एक दिन आएगा तुम्हारी रात की खूबसूरती जिस पर तुम शायरी करते हो वो खत्म हो जाएगी, जिसके जरिए तुम नेविगेशन करते हो वो खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हें रास्ता कौन दिखाएगा। और एक वक्त आएगा तुम्हें दिन की गर्मी में साया देने वाले दरख्त भी खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हें कौन उस वक्त बचाएगा। तो एक मफहूम है नजम और शजर में डिस्ट्रक्शन का, दूसरा मफहूम है यस जुदान में इतात का। बिल्कुल जैसे हुस्बान में आया था दे फॉलो देयर नेचर, चांद हो या सूरज हो, इसी तरह से नजम और शजर दे फॉलो देयर नेचर टू। अल्लाह ने जिसको जो काम बताया है वो उसे 1 इंच 1 सेंटीमीटर आगे पीछे नहीं होता। तो ए इंसान, तुमसे ये काम क्यों नहीं होते? फराइज पूरे क्यों नहीं होते? दीन की इबादत, दीन की बात मानना, दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी में चॉइसेस करना, दीन वाला हाल हुलिया एडॉप्ट करना, तुम्हें गले का फंदा क्यों लगता है? तो अल्लाह कॉन्स्टेंटली इंसानों को झंझोड़ झंझोड़ कर हर आयत में ये बात मेंशन कर रहे हैं। दूसरा मफहूम यस्जुदान में है इताअत का एंगल, कि सितारों का अपनी जगह पर कई हजारों साल से कायम रहना और दरख्त का साया देते रहना बगैर इसके देखे कि उसके दरख्त के साये में गुनाहगार बैठता है या मोमिन बैठता है। फर्ज करें बहुत अच्छा सा, बड़ा अच्छा शेड वाला दरख्त है, एक गुनाहगार शख्स गया, दरख्त ने फौरन अम्ब्रेला की तरह अपनी ब्रांचेस बंद कर ली, मैं नहीं बैठने दूंगा यहां पे तुम्हें। और कोई बहुत नेक इंसान आया तो उसने अपनी ब्रांचेस अम्ब्रेला की तरह और फैला ले। हम इंसान इंसानों को यूजुअली ऐसे ही डील करते हैं, जो हमें पसंद होता है हम उसके गले लग लग के उसकी तारीफें कर करके उसको दुआएं दे दे कर थकते नहीं, और जो पसंद नहीं होता मैं तो देखना भी नहीं चाहती। ऐसा नहीं होता मोमिन। मोमिन अपनी नेचर के मुताबिक, रब के बताए हुए कलाम के मुताबिक सबके साथ डिसेंट मामला करता है। याद रखें हमारा मिशन है इंशाल्लाह कि हम 20 दिन के बाद जब यहां से निकलेंगे तो हमारी जिंदगियों में हर चॉइस में ग्रेस होगी। अदल का मामला नहीं, अदल को छोड़कर ग्रेस का मामला करेंगे, इंसानों को ज्यादा देने वाले बनेंगे। वी वॉन्ट टू बी एट द गिविंग एंड, बेहतर है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये जुमला अगर आप कभी लिख लें कहीं पर और कहीं मुश्किल में पढ़ें तो आपको बहुत तसल्ली देगा। बेहतर है इंसान कयामत के दिन मजलूम बनकर उठे बजाय इसके कि जालिम बनकर उठे, इसलिए कि उस दिन जज वो होगा जिसने अगर अदल का मामला किया तो फिर जालिम बनने वाला बच नहीं सकता। तो बेहतर है इंसान दुनिया में अपना हक छोड़ दे, बेहतर है इंसान दुनिया में गिविंग एंड पर रहे, बेहतर है इंसान आखिरत में मजलूम बनकर उठे ताकि अल्लाह की रहमत और जो ज्यादा जोश में आ जाए।